नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और व्यापार के क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए कई पहलों का अनावरण किया। भारत और मलेशिया ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यूक्रेन ने रूसी मिसाइलों और ड्रोनों के उत्पादन में शामिल कंपनियों पर प्रतिबंध की घोषणा की। थाईलैंड में आम चुनाव की मतगणना जारी, वहां संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया गया। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में अर्जुन बबूता और इलावेनिल पलाविरिवन ने नई दिल्ली में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। और आईसीसी T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने मुंबई में नेपाल को 4 रन से हराया और न्यूजीलैंड ने चेन्नई में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। कोलंबो में आयरलैंड और श्रीलंका के बीच मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इनमें आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहनिर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान तथा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेनेट ऑफ मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से मुकाबले संबंधी सहयोग में विस्तार होगा।
सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरिटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।
श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। आतंकवाद पर कोई दोहरा मानदंड नहीं हो सकता और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मलेशिया में तमिल भाषा सहित सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों पर भी बल दिया।
भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में हमारे दिलों को और पास लाएगी।
श्री मोदी ने युवाओं के लिए शुरू की गई पहलों का भी उल्लेख किया। इनमें विश्वविद्यालय आदान प्रदान, कौशल विकास और स्टार्टअप कार्यक्रम शामिल हैं। भारत और मलेशिया ने एक संयुक्त बयान में वर्ष 2024 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
दोनों देशों ने उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि सेमीकंडक्टर सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। इसका उद्देश्य भारत की डिजाइन क्षमता और मलेशिया के निर्माण, असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग के लंबे अनुभव को जोड़ना है। कल मलेशिया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने कुआलालंपुर में सलामत दतांग मोदी जी प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मलेशिया में एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा भी की थी। दो दिवसीय यात्रा का समापन दोनों देशों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराने के साथ हुआ। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की 2 दिन की सफल यात्रा समाप्त करने के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी चेन्नई और मुंबई में सफल बैठकों के बाद नई दिल्ली आ गए हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया है कि इससे पहले सेशल्स के राष्ट्रपति ने चेन्नई और मुंबई में शासन, उद्योग, तटीय प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार से ओटावा में मुलाकात की। श्री डोभाल दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के क्रम में कनाडा यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने देशों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई पहलों में हुई प्रगति को स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के सालबारी में एक पैरामेडिकल संस्थान में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि संस्थान सरकारी अधिकारियों से विधिवत संबद्ध नहीं है। छात्रों का दावा है कि संस्थान द्वारा दिए जा रहे जीएनएम, बीपीबी, बीएससी नर्सिंग और अन्य पाठ्यक्रमों के प्रमाण पत्र अमान्य है। इससे छात्रों का भविष्य संकट में है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज रूसी मिसाइलों और ड्रोनों के उत्पादन में शामिल कंपनियों के साथ साथ रूस के वित्तीय क्षेत्र से जुड़े संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रूस की क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने वाले संस्थानों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों के कुछ हिस्से यूरोपीय संघ द्वारा रूस के खिलाफ आगामी 20वें प्रतिबंध पैकेज में भी शामिल किए जाएंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सर्वाधिक प्रतिबंध लगाए जाने वाला देश बन गया है। रूस के हवाई हमले में यूक्रेन के पूर्वी रिहायशी इलाके के एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो लोग घायल भी हुए। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने बताया कि यह हमले डोनेट्स्क क्षेत्र के क्रामाटोर्स्क शहर पर हुए। इसके कारण 9 मंजिला इमारत में आग लग गई। हालांकि रूस ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस की सुरक्षा सेवा FSB ने कहा है कि मॉस्को में रूस के सैन्य खुफिया एजेंसी के उपप्रमुख व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर गोली चलाने वाले संदिग्ध व्यक्ति को दुबई में गिरफ्तार कर रूस वापस भेज दिया गया है। थाईलैंड में समय पूर्व कराए गए आम चुनाव की मतगणना जारी है। चुनाव में प्रगतिशील पीपल्स पार्टी, लोकप्रिय फेऊ थाई और रूढ़िवादी भूम जैथाई पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। ये चुनाव धीमी आर्थिक वृद्धि और बढ़ती राष्ट्रवादी भावना के माहौल में कराए गए हैं। हालांकि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। स्थानीय चुनावी सर्वेक्षणों के अनुसार गठबंधन सरकार बनने की संभावना है। 500 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। आज के मतदान के साथ एक जनमत संग्रह भी कराया गया। इसमें मतदाताओं से सेना द्वारा 2017 में तैयार किए गए संविधान के स्थान पर एक नया संविधान तैयार करने के बारे में पूछा गया है। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत के अर्जुन बाबूता और इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में 505 का स्कोर बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड और चैंपियनशिप रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत की जीत की लय जारी रखते हुए हिमांशु ढिल्लो और शांभवी क्षीरसागर ने इसी स्पर्धा के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। युवा निशानेबाज सूर्य शर्मा ने स्वर्ण, मुकेश नेलावल्ली ने रजत और तनिष्क मुरलीधर नायडू ने कांस्य पदक जीते। T20 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने आयरलैंड को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 14 ओवर में 2 विकेट बिना नुकसान के 105 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज मुंबई में खेले गए T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने नेपाल को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 180 रन ही बना सकी। विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और व्यापार के क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए कई पहलों का अनावरण किया। भारत और मलेशिया ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यूक्रेन ने रूसी मिसाइलों और ड्रोनों के उत्पादन में शामिल कंपनियों पर प्रतिबंध की घोषणा की। थाईलैंड में आम चुनाव की मतगणना जारी, वहां संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया गया। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में अर्जुन बाबूता और इलावेनिल वलारिवन ने नई दिल्ली में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता और ICC T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने मुंबई में नेपाल को 4 रन से हराया। कोलंबो में आयरलैंड और श्रीलंका के बीच मैच जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ।